व्याख्या करूंगा।
तो बतला रहे हैं निराकार शब्द है, निर्गुण शब्द है, निर्गुण निराकार और निर्विशेष निशक्ति निरुपाधि इत्यादि जो शब्द हैं, इसमें गुण प्रधान मौलिक शब्द है। गुण रूप और रूप से अरूप बना है, अरूप से रूप नहीं बना। रूप में अ लगाओ तो फिर से ये हो गया, ये बीमारी है। किसी को नाक से पानी आ रहा है, शरीर गर्म है, छींके हो रही है, क्या समझो? ये जुखाम से ये लक्षण है। तो रूप है, किसी कारण से उसमें अरूप लगाया तो पीछे से अरूप बना, ये बीमारी है। किसके लिए? जो नहीं देखते हैं उस रूप को, उनके लिए अरूप कहा गया। क्यों नहीं देख सकते? किनमय वस्तु है, हमारी आंख है, वो उसको नहीं देख सकते। अभी चीज को समझने के लिए ऐसे समझिए, पानी है, पानी को किसी से पूछे कि इसका रूप क्या है, साइंटिस्ट क्या कहेगा? वो कहेगा जब देखेगा जैसे जिस चीज में रखते वैसा ही बन जाता है, दिखाई तो पड़ता है ना, तो जिसका रूप ही नहीं तो वह कैसे दिखाई पड़ेगा? इसका कॉलर क्या है? जैसा ही रंग डाल तो वैसा ही होता है। इसलिए साइंटिस्टों ने उसको कहा जिस कॉलर के जिस रूप में उसको रखो वैसा ही हो जाएगा। इसलिए सेफ प्लेस है तो सेफ कि नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं, कोई स्वाद नहीं है, पानी में जरूर अपना स्वाद है। तो अभी कोई चीज मिला दिया जाता है तो वैसा मालूम होता है, जैसे ये नमकीन पानी है, ये मीठा पानी है, ये ज्यादा पानी है, ऐसा। किंतु अपना उसका कोई रूप है, गुण है, टेस्ट है, बट इन कैनेट डिफाइन, लाखों से धारण कर सकता है। कलर ऑफ इसको निराकार इत्यादि कहते हैं। देख रहे हो, जब एक पानी के भी तुम रूप गुण इत्यादि को नहीं देख सकते, तो पानी को भी बनाने वाला उससे नहीं दे सकते है, उसके रूप को तुम क्या दिखाई कर सकते हो? इसलिए उसको निराकार कहते हैं। क्यों? अचिंता खलु भावा न संस्कार के न जो हो जाए, जो प्रकृति से अतीत है, अवांग मन से गोचर है, तुम अपनी बुद्धि से कैसे उसको नाप सकते हो, उसका कैसे विचार करें? इसलिए शास्त्रकारों ने इसलिए कहा कि प्राकृत बुद्धि से नहीं पकड़ में आ जाए, इसे वो निराकार है, वो निर्गुण है। भगवान में यदि गुण नहीं है तो ऐसे भगवान से हमें जरूरत क्या है जो उसकी जिसमें दया भी नहीं है, जिसमें प्रीति नहीं है, उस भगवान को मान करके क्या होगा? तो उसे तो पत्थर अच्छा है, पत्थर जैसा निष्ठुर है वैसे निष्ठुर है, आकाश जैसे निराकार हो गए तो आकाश की कोई पूजा करता है? इसलिए मुसलमान लोग भी, हिंदू लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी, या दूसरे बौद्ध लोग भी जैसे मूर्ति नहीं मानते हैं तो मस्जिद किस लिए खड़ा करते हैं? जरूरत क्या से खड़ा उसमें किस लिए? और ये बाइबल वाले क्या करते हैं? सत्य है ना, सत्य की जरूरत क्या है? खुले आकाश में निराकार का ध्यान भी तो नहीं होगा, उस तरह की कोई वस्तु नहीं होगा। इसलिए ये सब पूरी कल्पनाएं हैं, उनको किसी न किसी रूप से उनको मानना पड़ता है, किसी न किसी रूप से। तो आज यहीं पर समाप्त करूं, अब जब कब जब फिर आएंगे तो विशेष रूप में इसकी व्याख्या करके और भी उदाहरण और भी सब युक्तियां सुंदर सुंदर, जिसे आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि भगवान का रूप है, जीवात्मा का रूप है, ये जो रूप है ये रूप नहीं है। अभी जो देख रहे हैं इसकी कोई स्थिति नहीं है, नित्यता नहीं है, ये तो मिट्टी है। इसे हम दूसरे दिन इसको बताएं, शास्त्रों से प्रमाण लेकर के विचार करें। आज स्वयं हस नहीं है, मयूर नाच नहीं है, गायक नहीं दे रही, जो जो स्थिति में है उसी में शक्ति के लिए तरह है। सभी गोपियां कृष्ण के जीवन में बड़ी खुशी है, उन्होंने सोचा कि गोकुल में है, गोकुल माने वृंदावन को भी गोकुल का हम लोग गोकुल जाना चाहते, किंतु गोकुल मथुरा से कितनी दूर है, यमुना के ही पार में, मथुरा और उस पार में बस नदी का अंतर है। नदी में भी आधा आधा रख लिया जाए, आधा मथुरा की तरफ में और आधा गोकुल की तरफ में, तो कितना अंतर रह जाएगा, दो अंगुल का अंतर रह जाएगा। दो अंगुल में कितना अंतर है, दो अंगुलों में कितना अंतर है, दस केवल रेखा है। किंतु मथुरा के गोकुल कितनी दूर है, कृष्ण मथुरा चले गए हैं ना, गोकुल बहुत दूर है। अकेले आए तो रास्ता भूल जाए, और यदि किसी को साथ नहीं तो लज्जा लगती है, और जगत बहुत तेरी नहीं, कृष्ण से मिलना सहज नहीं है। इस जगत से निकल करके उस जगत में कृष्ण से मिलना इतना कठिन है, इसलिए कोटि कोटि में से कोई एक निकल करके गोकुल नगर में जाकर के उनसे भेद करता है। आज तक गोपियां तड़प रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए, आज गोकुल से जा रही हैं, कहाँ जाने चाहेंगे। इसलिए चरणीय बड़ी सोच कर गोकुल अभी बड़ी दूर है, निकट से निकट भी है, हृदय में ही गोकुल नगरी है, वहीं पर कृष्ण भी हैं। जीवात्मा में भगवान और भगवान में दूर पूरी नहीं है, किंतु कोटि जन्मों से हम लोग उनको नहीं पा रहे। कैसे मिलते हैं, इसीलिए ये भागवत, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पृथ्वी का भार उतर गया, जोड़ा गया था, द्वारकापुरी में कृष्ण लौटे, उनको अपने लीला भी समाप्त करनी थी, इसलिए छल बहाने से युद्ध का भाव दिखला करके बहाना, युद्ध तो कुछ नहीं हुआ और ऐसा बना बनाया कि लोगों ने देखा जितने जदबंसी से परस्पर लड़ करके खत्म हो गए, किंतु हुआ कुछ नहीं, मैच मरी थी। इसके बाद में कृष्ण अपने धाम को समस्त परिकरों के साथ में, उन्होंने पृथ्वी लोक में ध्रुव जी को, उद्धव जी को रख दिया, हमारे बाद में तुम रहना, लोगों के लिए तुम एक पुल बनना, जैसे कि इस भाव सागर से पार करके उतरने चाहिए, और एक सुखदेव गोस्वामी जी को रखना सुख पक्ष के लिए। और कहा कि नहीं, अप्रकट के बाद में श्रीमद भागवत रूपि ग्रंथ के रूप में अवतीर्ण होगा, इसलिए कृष्ण ही स्वयं श्रीमद भागवत कथा के रूप में सुखदेव जी के मुख से इस जगती का पद प्रकट किया, परीक्षित महाराज की सभा में ये प्रकट किया, सुखदेव जी प्रकट कर सात दिन की कथा वहां चली थी। उसने जीव कैसे भगवान को पा सकता है, सरल सहज रूप में बोधगम्य रूप में एक चीज को उन्होंने दिखाया, लभ्वा सुदुर्लभम नीतम बहु संभवान से मानिष्यम अर्थतम अनिष्टम अपि हरीर तूर्णम जते तना पतेत अनिमित्त सुजावत नीचे साय दिशा खल सर्वत। परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज जी को एक खड़ा किया है बीच में तोता के रूप में, किंतु और सब तोता जी के लिए कर रहे हैं, सुख परीक्षित जी के लिए नहीं, वो तो मुक्त थे। उन्होंने कहा कि देखो ये मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, कोटि कोटि जन्मों के बाद में ये सुलभ हुआ है, किंतु क्षण भंगुर है, अभी है, अभी घर पहुंचे पैसे कितने आदमी पहुंचे ना पहुंचे कोई चीज नहीं, इसलिए मनुष्य जन्म जब तक है इसी बीच में अपना जीवन सफल कर सकते, कैसे सफल करें। कुछ भागवत में आप लोगों ने सुना होगा, बताया गया कृष्ण ही स्वयं भगवान है, एक एक अंश कलापुं का कृष्ण स्तु भगवान, और किसी शास्त्र में गीता और भागवत को छोड़कर किसी भी पुराण में उपनिषद में वेदों में ये अच्छी तरह से नहीं बताया कि हम लोगों का आराध्य कौन है, किसकी आराधना करनी चाहिए,
सबसे अच्छा फल किसने मिला नहीं कर रहा है, केवल भागवत में ही उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को बताया। जितने सब देवता हैं इनका भजन करने से देवी देवता क्षण भंग फल देंगे और वो संसार में बंधन का कारण होगा। शंकर जी ने रावण को, भस्मासुर को, कंस को भर दिया, धन धान्य लक्ष्मी इत्यादि से परिपूर्ण हो आया काम में, रावण को काम में आया, वंश के समेत भंग हो गया। इसी तरह से देवता और देवियों के दी गई हुई हमारी रक्षा और शांति नहीं दे कर सकते और न शांति दे, केवल मात्र कृष्ण का एक नाम लेने से, एक बार भी कोई नाम ले उनकी कथाओं का श्रवण करे या कहे झट माया के पास दुखों से नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत में पहले उन्होंने बहुत से राजाओं का जीवन चरित्र वर्णन किया, जैसे पुरंजन उपाख्यान का, भरत महाराज जी का, कपिल देव ऋषि का संवाद और भी बहुत, पृथु नहुर और सब बड़े बड़े राजाओं का चरित्र वर्णन। इसमें यह सिखाने के लिए भाई ये बड़े बड़े राजा लोग आज कहाँ हैं, उनको सुख शांति नहीं मिली, उनको ये नस्पर चीजों को छोड़ करके जाना पड़ा, इसलिए इस संसार के सुखों में जो भोग में मस्त हो जाते हैं उनको सुख और शांति कदापि नहीं मिलेगी। इसलिए सुख शांति चाहते हो तो कृष्ण की कथाओं को सुनो, उनका नाम कीर्तन करो, उनके चरणों में भक्ति करो। विशेष करके यह बात प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान में बतलाया, समस्त शास्त्रों का सार यही बतलाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम सख्यात्म निवेदनम। वैसे जन भगवान की कथाओं को पहले गुरु रूप से श्रवण कर लेंगे, इसलिए गुरुकरण जरूरी है। गुरु भी कैसा होना चाहिए भागवत में बतलाया, शुक्राचार्य जैसा गुरु नहीं तो बलि महाराज को डुबा देंगे, इसलिए उन्होंने बलि महाराज ने उस गुरु को क्या, गुरु कैसा होना चाहिए यह बतलाया, नारद जी जैसा, व्यास जी जैसा, सुखदेव गोस्वामी जैसा गुरु होना चाहिए, कभी हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध सभ्य पलायन जैसा गुरु होना चाहिए, कपिल देव जी जैसा गुरु होना चाहिए। संसार में किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, उनसे विरक्त हैं और कृष्ण के चरणों में परम प्रेम है, उनकी कथाओं को सुनने में, उनका नाम कीर्तन करने में बड़ा उनको होता है। ऐसे लोगों को गुरु किया जाए, संसार से आसक्ति छोड़ करके भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम रहने वाले ऐकांतिक गुरु को करने से ही कृष्ण के चरणों में पकड़ लीजिए, अन्यथा नहीं मिलेगी। इस तरह से नौम स्कंध तक की कथाओं को उन्होंने सुनाया, विशेष करके पुरंजन उपाख्यान में संसार क्या है, स्त्री पुरुष क्या है, संसार का परस्पर प्रीति क्या चीज है, इसको अच्छी तरह से समझाया। ये भी और जिसने जन्म लिया उसको मरण भी है, अवश्यंभावी मरण होगा, ये सब कथाओं को किस लिए सुनाया, क्षेत्र प्रस्तुत करने के लिए, किसी का क्षेत्र कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत, भक्ति को जागृत कर। जब तक ये सब संसार की आकांक्षाएं रहेंगी, कृष्ण की कथा वहां पर नहीं होगी, कृष्ण के कथा सुनने में मन नहीं लगेगा, शुद्ध गुरु करने की इच्छा नहीं होगी, इसी में हम लोग रहे। इस तरह से ये कथाओं को सुना करके क्षेत्र को प्रस्तुत किया, अब कृष्ण का लीला चरित्र के लिए अब दशम स्कंद में हम लोग पहुंचे। दशम स्कंद में जब तक पवित्रता हमारे हृदय में नहीं है तब तक कृष्ण वहां पर नहीं होंगे, इसलिए पूतना का चरित्र आया, कृष्ण प्रकट हुए कंस के कारागार में, इसलिए जब आदमी दुखी होता है तो अब इतना दुखी हो जाता है कि अब संसार का मैं कहीं दूर की लालसा नहीं रह जाए, हमारा बचाने वाला रक्षा वाला करने वाला कोई नहीं है, ऐसी स्थिति देवकी और वसुदेव की हुई। तब उन्होंने प्राण से उनको पुकारा प्रभु को, सुखी स्थिति में नहीं, इसलिए भगवान जानबूझ करके दुख देते हैं, इसे जेल खाने में जिनकी छाती पर रख करके दाल दली जा रही है, दाल दलना मैंने क्या, उनको रोज अपमानित करता था, गाली देता था, ऐसी स्थिति में देखा जाए और प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं, उनको पुकारा प्रभु वहां पर। यहां पर एक बात देखी जाती है, जागतिक शब्द का कोई भी मूल्य नहीं है, परमार्थिक शब्द का ही मूल्य है। वसुदेव जी को कृष्ण ने प्रकट होकर के कहा था कि हमको गोकुल में दिया है और कल से कादन जी हमारी लड़की हुई है, वहां उनकी लड़की दिया। ये जागतिक शब्द है। उन्होंने कहा ठीक, कंस से उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि आठवां पुत्र क्या मैं समस्त पुत्रों को जन्मते ही तुमको दे आऊंगा जितनी भी क्षमता में। किंतु कृष्ण जन्म होने के बाद में उनको गोकुल के दे आए और वहां से लड़की उठा ले आए और उस कंस से वो कहा कि हमको लड़की भाई, लड़की नहीं थी ना लड़का। तो ऐसा महात्मा पुरुष और झूठ बोला, इस पर भी विचार करना। कृष्ण जो कुछ कहते हैं वही परम सत्य है और बाकी सब झूठ है। कृष्ण के सेवा के लिए जो कुछ किया जाता है वही परम सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य। इधर में कृष्ण वहां पर भी आधी रात में प्रकट हुए थे यशोदा जी के गर्भ से, एक ही साथ में यहां और वहां से। जब ये लेकर के गए कृष्ण में कृष्ण मिल गए और रह गए लड़की, लड़की को उठा लिया कृष्ण को वहीं पर। यह तथ्य किसी को नहीं मालूम हुआ। कृष्ण का पहला काम क्या है? पहला काम उनकी लीला में ये देखा जाता है, पूतना उनको मारने के लिए। पूतना मैंने क्या, पूतना जो पवित्र नहीं है। आजकल घर घर में मांस मछली लोग खाए, विशेष करके पाश्चात्य देशों से यही सब लेकर के घर में होता है। प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट तंबाकू अफीम गांजा अफीम धूम्रपान और सब मदिरा, ये क्या चीज है? ये पूत नहीं है, पवित्र नहीं है। इन्हें इनका जो सेवन करेगा वो कभी भी भगवान के निकट नहीं जा सकता है, भगवान की कथाओं में उनकी नहीं हो सकती, उसका कल्याण नहीं होगा। अरे मछली खाना क्या चीज है? हिंसा है ना, हिंसा से भगवान जी नहीं है। इन्हें इन चीजों को दूर करना चाहिए। तब प्याज तो फल है, उसमें क्या है? अरे भतूरा भी तो फल है, तो भतूरा खा लो ना, प्याज क्यों खाएगा? फल तो और बहुत से चीजें हैं, तो सभी फल खाए जाएंगे? इसलिए ऐसा नहीं। हमारे नीचे उसमें देखा जिसमें सात्विक पक्ष में भगवान का भजन करने के उपयोगी है, जैसा चीज खाओगे वैसा ही मन होगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों के हृदय में जो अपवित्रता होती है उसको दूर कर देते हैं, इसलिए पूतना का वर्ण। इसलिए साधक जब भगवान का भजन करने के लिए चलता है तो उसको शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होने के लिए जो अपवित्रता है पूतना, जो पूत नहीं है, तपस्या नहीं है, उसको सबसे पहले दूर करना। इसके बाद उन्होंने कर्वट फलित जो गोवर्धन पर्वत से धारण कर सकते हैं, जो अपने श्वास से विश्व ब्रह्मांड को धारण करते हैं, वो करवट भी बदल सकते हैं, ऐसी लीला करते हैं। उसी दिन में एक सप्तासुर नाम का कंस का विचार आया, देखा कि रूप धारण करने से पूतना तो रूप धारण करके दैत्य को मार दिया, आज हम रूप ही नहीं धारण करेंगे, गाड़ी में प्रवेश करके कृष्ण को दबा करके मार डालेंगे। इसलिए गाड़ी में आविष्ट हो गया, गाड़ी में अविष्ट हो गया, बैठे आप बैठो भी बदल, गाड़ी में अविष्ट हो गया और इतना भार उसमें हुआ, इतना भार कृष्ण गाड़ी के नीचे एक पलने में झूल रहे थे। उसने शरीर धारण नहीं किया किंतु गाड़ी के ऊपर से ऐसा फाड़ दिया जो उसके चक्के मिट्टी में घुसने लगे और गाड़ी से कृष्ण दब गए। कृष्ण खेल ही खेल में खेल रहे थे, अपने पैरों को इस प्रकार से कर रहे, कभी पैर के अंगूठे को मुख में दे रहे थे और ऐसे ऐसे उछाल रहे थे। खेल ही खेल में कृष्ण को पता नहीं और कोई झटका लगा और वो लट करके गिर गया और वो मर। ये क्या चीज है? जागतिक बुद्धि। समस्त शास्त्र पढ़े हैं कि कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं करते, वेद शास्त्र उपनिषद सब उनको ज्ञान है, कंठस्थ है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद उनको सब है, उपनिषद सब आता है, किंतु कृष्ण के चरणों में एकांतिक भक्ति और विश्वास नहीं है। यह है सपटाशु का काम। क्या हम सत्ता सखत माने कहते हैं बैलगाड़ी या किसी भी वाहन को। आजकल शहर में हम समझते हैं कि दिल्ली में ही सैकड़ों या हजारों गाड़ियां होंगी, ट्रक होंगे, जिससे शहर के गंदी चीज़ों को एकत्र करके उसको बाहर में फेंका जाता है। तो जितनी भी गंदी चीज़ें हैं वो गाड़ी में रख करके और फेंका जाता है। ऐसी चीज़ों को तुम्हें अपने ऊपर में रख लिया, कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, इनको कहते हैं सखतादमी। यदि चैतन्य महाप्रभु के साथ में प्रेम रखना चाहते हो, कृष्ण के चरण में प्रेम रखना चाहते हो, तो क्या रखो यार, छोटो हरिदास, छोटा हरिदास है क्या? एक चावल मांगने गया एक महिला के पास में, महाप्रभु जी आपकी बाहर का है लाल कपड़ा पहन करके और बाबा जी का वेश लेकर के, तिलक लगा करके, कंठी माला लेकर के, त्यागी बन करके हमारे पास में आया, हमको कीर्तन सुनाता है और स्त्रियों से बातचीत करता बाहर का, जीवन भर इसका मुख नहीं देखूंगा। ऊपर से दिख रहा था जिसमें कृष्ण भक्ति करते हैं, और करता है भक्ति किसकी, कामिनी की, बाहर करो हमारे दरबार में आज से कभी नहीं आने पाए, उन्होंने प्राण तक छोड़ दिया कि तू उनको फिर से अपने पास में नहीं बुलाए। यदि कृष्ण के प्रति ऐसी स्मृति रखनी है तो पूरे कर्कट को हटा करके वहां पर अपनी गाड़ी में प्रेम का माल रखना होगा। प्रेम कैसा, अन्ना विलासिता सुन्नम ज्ञान कर्मात्मनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम। कैसा भक्ति हो, अन्य अभिलाषिता, बस कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। कृष्ण में कुछ कामना का गंध हो सकता है हम लोगों को, इसलिए कृष्ण को मत चाहो, क्या चाहो, तुम शक्ति है, इसलिए राधा जी को अपनी आराध्या मानो। राधा जी के बिना कोई बातें नहीं होगा, यही श्रीमद् भागवत का सार है। अभी हम लोग किसी प्रसंग का वर्णन करेंगे, प्रेम क्या है, गोपियों का प्रेम क्या था, ये उद्धव जी बतलाएंगे, जो भागवत के सर्वश्रेष्ठ एक तरह से वक्ता हैं, कृष्ण के शिष्य हैं, कृष्ण के सखा हैं, उनके मुख से ये सब बतलाएंगे जो गोपियों का प्रेम क्या था। कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती, किंतु अपनी सहेली जो राधिका जी हैं वही जीवों की एकमात्र स्वामी हैं, आराध्या हैं, ईश्वरी हैं, सब ये भागवत का था। तो पूरे करकट कचरे जितने हैं जगत के वो निकालो अपने मन से, अन्य अभिलाषिता कोई प्रकार की अपने सुख की अभिलाषा मत रखो, नहीं तो कृष्ण नहीं आएंगे। मैं ये बहुत सुंदर स्वादिष्ट आम का फल है, बस देखते हैं खाने की इच्छा, तुमको भक्ति नहीं होगी। आज रसगुल्ला बनाए खूब सुंदर, खाने की इच्छा तुमको नहीं मिली, जहाँ देखने की इच्छा देखा तुमने रसगुल्ला बहुत सुंदर है, ये कृष्ण खाएंगे। कोई अच्छा फल मिला किसको दो, कर्मण्य वाधिकार रस्ते माँ फल इसको दाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, इसलिए साधन करो कृष्ण के लिए और उसका जो फल है वो कृष्ण को निवेदन करो। और नहीं तो सुनने के लिए अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छी अच्छी लड़कियाँ आए और धर्म नजर लग गई तो गया भागवत उड़ जाएगा वहाँ से, इसलिए उसका फल तुम मत मलो। भागवत की कथा करें खूब प्रशंसा हो रही है, बाबा पक्का तो बहुत सुंदर होता है, तो जे ये मेरी गुरु जी की कृपा है, मेरी नहीं। और ये कृष्ण कथा का ये रसा रस रस हमारा इसमें कुछ नहीं है, तब तो बच जाएगा, और नहीं तो गए जहाँ दोनों, खुदा की कसम, खुदा की कसम गए दोनों जहाँ से खुदा जाओगे वहाँ। इसलिए इन चीज़ों को रखना चाहिए, इसलिए हमारी गाड़ी में पूरे करके चल न रहें, अन्न अभिलाषिता न रहें, ज्ञान पर नहीं रहें। यदि अद्वैत बात के प्रति इतना भी आदर हुआ तो गए दोनों जहाँ से खुदा की कसम। इन चीज़ों को खूब याद रखो, यदि किसी कर्मी और धनी के प्रति तुम्हारी ये बड़ी, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी है ना माया का, वो सबसे बड़ा शिकार है, इस चीज को समझो है? ये बहुत बड़ा भारी धनी आदमी है और बहुत विराट व्यक्ति है, मतलब क्या, तुम्हारी नजरों में माया में जो सबसे डूबा हुआ व्यक्ति है वो तुम्हारे लिए बड़ा है, तो तुम उसी में जाओगे। हम लोगों के लिए बड़ा क्यों है, सुखदेव गोस्वामी जी हैं, पुरुष सनातन है, भिखारी हैं, जो लंगोटी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कृष्ण कथा ही उनका सर्वस्व है, ये पूरा कर सक वाला चीज निकाल करके ये माल भर देने प्रेम कृष्ण के, ऐकांतिक प्रेम कृष्ण अनुशीलनम भक्ति समान अनुकूल लेना, भक्ति में वही चीज श्रेष्ठ है जो उसके लिए अनुकूल है, उसको ग्रहण करो, प्रतिकूल को छोड़ो, पूतना को छोड़ो, सप्तासुर को छोड़ो, और एक और उसके बाद आया कौन, तृणावण, उसको सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा, कृष्ण ने उसको भी मारा, तृणावण क्या, युक्ति जा, अपनी युक्तियों से लोगों की आंखों को अंधा कर और संसारिक भोग इत्यादि मुक्ति को बड़ा दिखलाना, ये है तृणावण का। ब्रज में बहुत बड़ी भारी आंधी आई, धूल से सब भर गया, आंखों में धूल चला गया, कुछ नहीं दिखाई, कृष्ण देखा कि ये सबको ये कष्ट दे रहा है, वो कृष्ण को गोदी में लेकर के उड़ गया, कृष्ण उसके गले में हाथ लगा दिया, सैर कर ले आकाश में, बहुत दिनों सब विमान में नहीं चढ़े थे, अभी सब तब बच्चे थे ना, इसलिए विमान में चढ़ने की इच्छा हुई, बस उसके गले में हाथ लगा दिया, उसको लेकर के वो उड़ गया ऊपर, जब घूमने के कृष्ण की लालसा पूरी हो गई, अच्छा अब मैया से दूध पिनाया, जल्दी से नीचे ले जाओ, वो नीचे ले गए थोड़े, कृष्ण ने थोड़ा सा कहा कि भाई नीचे लो, उन्होंने स्विच दबाया, स्विच क्या दबाया, ये स्विच दबाया, और स्विच दबने के साथ ही साथ में आंखें लाल लाल रसगुल्ले के समान निकल आई, अब प्राण इधर नहीं उधर नहीं, बस झट वहां से गिरा। तो जो लोग भगवत भक्ति में कभी कृष्ण का क्या है, कृष्ण कुछ नहीं है, कृष्ण का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, वो निर्गुण निरंजन निराकार है, भगवान को किसी ने देखा, यदि देखा तो माने, ये सब जितनी युक्तियां हैं ये सब बेकार की, इन्हीं युक्तियों से साधारण लोगों के आंख को ज्ञान को बंद करके लोग भगवत भक्ति के जाने से रोकते हैं, कृष्ण उसको बचपन में ही उसे समाप्त कर देते हैं, इसलिए ऐसी युक्तियों में नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कोई कुछ कहता है तो हम उसे मिलाएंगे भागवत क्या कहते, गीता में कहा गया, रामायण में क्या कहा गया, विशेष करके भागवत में जब उसका अनुकूल समर्थन करते हैं, कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, अब आप देखिए कि भागवत में कहां कहा गया कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति को सब जगह निराकरण किया, इसलिए मुक्ति भगवत भक्ति चाहिए, कैसी भगवत भक्ति चाहिए, यह भागवत में कहा गया वैसा, इसलिए किसी की बात नहीं सुनना है। परीक्षित महाराज ने वहां पर 88,000 ऋषि लोग थे, 88,000 प्रकार की बातें कही, किसकी सुना, केवल मात्र सुखदेव गोस्वामी, नारद गोस्वामी, व्यास की बातें सुनी, और किसी की बात नहीं सुनी, उस तरह से संसार में कहने वाले लोग हमारे मन के अनुकूल मनोरंजन करके ऐसी सुंदर सुंदर बातें कहेंगे जो जनता को दुख कर उनके पचड़ों में नहीं पड़ना है, इसलिए कृष्ण ने उसको चुनावर का बन, इसलिए दूसरों सबकी बातें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, एकमात्र कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण के अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है, इस तरह का भाव रखना। इसके बाद में वहां से लौट आते हैं, ब्रज में वृंदावन जाए, डेढ़ 2.5 वर्ष या 3 वर्ष की वहां पर लीला की, और बहुत सी लीलाएं हैं, उसमें यशोदा जी के साथ में कृष्ण जी का प्रेम का वर्णन है, वात्सल्य का भाव, ये गोकुल तक में है महावन, वहीं पर रह करके वो चोरी भी करते थे मक्खन इत्यादि, मक्खन का यह चोरी यह सब प्रेम की लीला है, थोड़ा सा देखिए सुनिए तो कृष्णदास जी बोलिए तो वो मुक्ति को मट्टी को कैसे मार गया ढेला, मार गया ढेला ढेला, आप लोग पाठक सुनिए, सबका आदि स्वयं अनादि, और वो आज की प्रकार की लीला करके ब्रज के समस्त लोगों का चित्त हरण कर रहा है, यशोदा मैया ने कहा जैसे बांध करके रखो, बांधने लगी। जब बांध रही है अपने केस का एक बांधने का रेशम की डोरी, अढ़ाई हाथ दो हाथ एक गली, बड़ी कोमल रेशम की डोरी से बांध, ये खल और दूसरा खल कौन, उदू खल, दोनों के एक साथ में बांधूंगी। ये सब कथाएं पहले आई है, मैं उसका साथ थोड़ा सा बतला रहा हूं। दो अंगुल कम पड़ जाती है, एक दूसरी रस्सी में आई, तीसरी रस्सी आई जोड़ी गई, बस दो अंगुल कम पड़ती गई, फिर रस्सी आई पांच हाथ की रस्सी जोड़ा, फिर दो अंगुल कम पड़ गई, एक बार भी नहीं बधी। गोपी यहां ताली देकर के हंसने लगी, क्या माजरा है, क्या बात है, ये बंद नहीं रही। हे गोविंद, गोविंद हे सालग्राम, हे प्रभो, हे नारायण, हमारे गोप से निकला ये, और इसको मैं बांध नहीं सकती, बड़ी लज्जा की बात है। गोपिया ने जरा बांध कर देख रहा हो तो, अरे इसके ललाट में ब्रह्मा ही नहीं, ये बंधन लिखा तो तू कैसे बांधेगी, तुम एक दो जन्मों में नहीं बांध सकेगी, दस जन्मों में नहीं बांधेगी। उन्होंने कहा मैं तो बांध करके रहे, बांधने लगी, ब्रज की सारी रस्सियां आई, कितनी मील लंबी हो गई, और कृष्ण की ये पांच छह अंगुल की बारह अंगुल की कमर नहीं बन सकी। क्यों नहीं बन सकी? कृष्ण की इच्छा के विपरीत उनको कोई नहीं बांध, कृष्ण की कृपा चाहिए, साधन करने से ही नहीं होगा, एक साधन का एक अंगुल हमारा साधन होना चाहिए और दूसरा भगवान की कृपा होनी चाहिए तो बंध रहे, अन्यथा कृष्ण को कोई नहीं बांध। जो सुधा जी चाह रही थी कि मैं बांध लूंगी, तो अच्छा तब बांध लो, बांधी 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 सबरे से बिना खाए पिए दोपहर और भी हो चला, पसीने से तरबर हो गई, मोती जैसी पसीने की बूंदे टप 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 टप, केस खुल गया, उसमें मालाएं उसके फूल छूट करके गिरने लगे, मुंह विवर्ण हो गया, लाल हो गया, लज्जा से विवर्ण हो गया, सोची मैं इसको नहीं बांध सकती, हे प्रभु मैं क्या करूं, इन शक्तियों के सामने हमारी लज्जा रहो। जब ही वो शरणागत उधर में हुई और इधर में कृष्ण की सिपाही, कृष्ण की कृपा दूर नहीं थी, कृपया स्वबंधने, हम लाख कोशिश करेंगे, जब तक भगवान की कृपा या भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक उनको नहीं बांध सकते, उनको नहीं मिल सकते हैं, इसलिए भक्तों की कृपा होनी चाहिए और भक्तों के कृपा के अधीन भगवान की कृपा है, इसलिए यहाँ पर भगवान की कृपा भी चाहिए और अपना साधन भी चाहिए, ऐसा साधन जो कृष्ण को दया आ जाए और वो बन जाए, इसलिए झट वो बन जाए। यहाँ तक को ही गोकुल महावंशी दिया, और भी सब बातें हैं, इसके बाद में आए वक्त सुहा वृंदावन, उनका सबसे पहला काम था बलदेव प्रभु जी और वो गैया चराने निकले, भूख लगी है, ताल फल पके हुए हैं, पासी में तालवन है, मधुपुरी नहीं, मधुपुरी के पासी में मधुबन नहीं, उसी के पास में तालवन है, पहले मधुबन मथुरा उसी के अंदर में है और उसी के पास में ही तालवन है, पासी में मधुबन में वो गैया चरा रहे थे, कितने में ताल का सुंदर सुगंध आया, बच्चों ने कहा कि बड़ी भूख लगी, खा लो कुछ, पासी में तो बन है, ताल फल पड़े हुए हैं, कभी वहां पर हम लोग जा नहीं सकते, कंस ने अपने खाने के लिए ही बगीचा बनाया है, उसमें किसी को नहीं जाने देना, जो अपने लिए बगीचे बनाते हैं, अपने लिए रहने के लिए घर बनाते हैं, उसमें ठाकुर जी को नहीं रखते, बगीचा बनाते हैं कि तो उसका फल भगवान को नहीं देते, अपने लिए बहुत सुंदर घर बनाया और उसमें सुंदर सुंदर गर्मी के दिनों में कूलर लगाया, घर एकदम ठंडा है और ठंडे दिन में गर्म बनाने के लिए उसकी व्यवस्था है, तरह तरह के खाने की चीजें हैं, सुख भोग की चीजें हैं, किंतु कृष्ण का इससे संबंध नहीं, तो ये बेकार चीज है, इसी का नाम है गधा, गर्दवासुर या धेनुकासुर, गधे को कहते हैं कि तू बड़ा गधा है, माने क्या मूर्ख है, जानवरों में सबसे मूर्ख यही गधा होता है, इसलिए मनुष्यों में जो भगवान का भजन नहीं करते वो दो बैर वाले होते यदि चतुष्पद गधे के समान मूर्ख है। उन्होंने क्या किया, जैसे वो कंस को ही केवल देगा, दूसरों को कृष्ण के भक्तों के लिए नहीं देगा, बच्चे को आगे करते हुए, बलदेव और कृष्ण को आगे करते हुए जितने बच्चे थे वहां पर आए। बलदेव प्रभु जी ने एक पेड़ को पकड़ा और ऐसे हिलाया और धप 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 करके फल गिरे शुरू करके। भीम कासुर बड़ा क्रोधित हुआ और वहीं से अपने मधुर बोली में हो कैसे करते हैं ना मधुर बोली पुलिस प्रकार से करता हुआ रेंकता हुआ वहां से चला, हमारे बगीचे में कौन घुस आया। कृष्ण बलदेव को देखा उसने पिछले पैरों से, आगे पैर से नहीं मारे, ये गधे इत्यादि पीछे के पैर से मारते हैं। बस बलदेव प्रभु जी ने झट उसको पकड़ लिया और घुमा करके उसी के ऊपर में दे मारा। एक पेड़ टूटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत से पेड़ गिर गए और फल से वो फर गया और वहां पर जितने पशु थे पशुओं को उन लोगों ने मारा। बड़ा विभत्स कांड हो गया। आए थे फल खाने के लिए किंतु उनकी लीज से, उनके रक्त से, उनके मांस से एकदम जंगल भर गया। बच्चों ने आज फल नहीं खाया, वहां से चले गए। किंतु तब से ये लोग मारे गए। कंस को कहने के लिए, संवाद देने के लिए भी कोई नहीं बचा। तो जो गधे लोग खुद ही भगवान का नहीं भजन करते और दूसरों को भी बाधा देते हैं कृष्ण भक्ति का रस आस्वादन करने में, वो सब गधे मूर्ख हैं। वो क्या करते हैं, ये जो सांसारिक सुख है इसी को समझते हैं कि ये अच्छी चीज है, भगवान के भक्ति रस को वो नहीं समझते। इधर सुनिए, इधर सुनिए, तो वो इस चीज को नहीं समझते हैं। इसलिए जो भगवान की भक्ति देकर के संसार के सुखों में, संसार के कर्तव्यों में लगा हुआ है वो सब गधे हैं। उसका कर्तव्य क्या था, कंस ने जो कहा है वो इसी का पालन करना हमारा कर्तव्य है। उसी तरह से जो लोग संसारी कर्तव्य को प्रधान कर्तव्य मानते हैं और भगवान का भजन करने को नहीं मानते हैं, ये सब गधे। कहते कि मैं, मेरी स्त्री है, पत्नी है, पुत्र है, इनके प्रति हमारा कर्तव्य कर्तव्य है। अरे तुमको पानी किसने दिया, हवा किसने दिया, माता के गर्भ में तुम्हारी रक्षा कौन थी, तुम्हारा पिता कौन था, नहीं विचार कर। इस तरह से विचार करने पर मालूम होता है भगवान के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वही परम कर्तव्य है। ये भीमकासुर को मार करके ये बताए। पासी में एक दिन खेलते हुए जा रहे थे, काली नाम का एक नाग काली हरद में था। इस कथा में ये सार है, यदि भगवान को पाना चाहते हो, भगवान के भक्तों का आदर, यदि भगवान के भक्तों को, परिकरों को तुमने कष्ट दिया, उनसे शत्रुता की, तो भगवान से कभी नहीं मिलेंगे और तुमको नरक में जाना पड़ेगा। इस चीज को समझो, कृष्ण के परिकर हैं गरुड़, सांप भी उनके भाई हैं, दोनों में अनबन थी। सांप चाहते थे गरुड़ जी को ध्वंस कर दें और गरुड़ देखते थे इनका कल्याण हो, वो सत्य इनकी कल्याण की भावना करते, अपनी माँ को उनकी माँ की दासता से छुड़ाने के लिए अमृत ले आए, दिया और दे करके भी छोड़ना नहीं चाहते। शत्रुता हुई वृंदावन में तो वहां पर सांपों से युद्ध करने के बाद में सांप काली भाग करके चला आया वृंदावन में। वो जानता था कि यहाँ पर काली हरद में वृंदावन में सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी को अभी संपात किया, गरुड़ तुम यदि यहाँ आएगा तो तुम मर जाएगा। किस लिए, एक वहां पर मच्छ था, मच्छ माने मछली का पुरुष, एक दिन गरुड़ ने उसे खा लिया और उसकी स्त्रियां रोने लगी। सौभरी ने कहा तुम यदि यहाँ पर आया फिर मांस खाया तो तुम मर जाएगा, तुम्हारा सिर उड़ जाएगा। गरुड़ जी हंस करके चले गए, उन्होंने देखा ये नहीं जानता कि मैं भगवान का प्रिय हूँ, भक्त हूँ, ये नहीं जानता, इसलिए ऐसा किया। फल क्या हुआ, बहुत खराब फल हुआ। कुछ दिनों के बाद में काली वहां आया और उसके पीछे जितने थे मछली और मच्छर दोनों सब मर गए। और सबरी ऋषि का क्या हुआ, सबरी ऋषि को काम उत्पन्न हुआ हृदय में, जो 10,000 वर्ष तक नंगे रह करके पानी में रह करके तपस्या करते थे, काम अभिलाष हुआ और इनके मनधाता के 50 लड़कियों के साथ में अपने योग बल से 50 सूत्र धारण करके उनकी 50 कन्याओं का विवाह करके 10,000 वर्ष योग बिता दिया। 10,000 के बाद में उनको कुछ चेत हुआ, फिर उनको छोड़ करके आए और आकर के भगवान का भजन करने लग गए, जोग टोग छोड़ दिया। काली उसी में रहता था, भगवान ने उसको दुख करने के लिए क्या किया। लेकिन बीज से रहित करने के लिए उसने खुद पड़े। खुदने के बाद में काली उनको मारने के लिए आया बीज दसने के लिए, और दसने लगा और अपने खेतों से उन्हें बांध लिया और गले में छाती में काट लिया। उनकी स्त्रियां जो थी नाग पत्नियां बड़ी भक्त थी, नहीं ये काली तो बड़ा था, ये मर के नहीं जाता, हम विधवा हो जाना हमें मंजूर है। अब इतने में कृष्ण लपक करके ऊपर आए, उसके सिर पर चढ़ गए और अपने पैरों से नृत्य करते हुए साथे छई नाथ भिन्न इत्यादि नृत्य करते हुए गोपियों को दिखला रहे हैं कि मैं कैसा नृत्य कर रहा हूँ, और एक एक क्षण को तोड़ने लगे और रक्त उगलने लगा। उस समय में जब रक्त उगलने लगा, स्त्रियाँ तो भक्त थी, उनको पहले बतलाया था काली को जो कृष्ण की भक्ति करो, उनसे शत्रुता मत करो, माना नहीं। आज समझा जो मैं किसी से मैं डरता नहीं था, मैं गरुड़ से भी लड़ा किंतु गरुड़ से जितना डर नहीं हुआ, इतना भारी इसके बच्चे के पैर में इतना है और इतना बल है, तब हुआ जैसे अरे ये हो न हो नारायण। यही भाव आया, उनकी पत्नियां समझ गई, पत्नियों ने प्रभु अब हमको विधवा मत बनाइए, अब ये भक्त होने जा रहे हैं, अब अनुकूल हमारा होगा। इसलिए पहले कहती थी जैसे मार डालो विधवा हो जाएंगे हम, वो अच्छा है, किंतु अब नहीं, जब तक पति भगवान का भजन नहीं करता उसे कोई संपर्क नहीं, यदि वो भगवान का भजन करता है तो हम दोनों का कल्याण होगा, इसलिए उसकी सेवा होगी। तजिए कोटि बैरी सम यद्यप परम सने ही, क्या जिनके प्रिय न राम वैदे, जिनके प्रिय न कृष्ण और राधा जी प्रिय नहीं है, उनको बैरी के समान में छोड़ो। सजऊ पिता प्रहलाद भीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु सजऊ कंत ब्रज बनितन भय जगभ। ब्रज की पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया, बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया, भरत जी ने अपनी मैया को छोड़ दिया, और पिता को किसने छोड़ा? प्रहलाद ने अपने पिताजी को छोड़ दिया, जगत में मंगल ही हुआ। इसलिए जो भगवान का भजन करने वाले हैं उन्हीं के साथ में हमारा संपर्क है, यदि हम कल्याण और शांति चाहते हैं तो, और यदि कल्याण नहीं चाहते संसार में डूबे रहो लाख कोटि जन्म तक इधर में चलते रहो, उसे कल्याण नहीं। इसलिए भक्तों का संग होना चाहिए, भक्तों की कृपा होनी चाहिए। अंत में कृष्ण ने उसे छोड़ दिया और अपने पैर का एक छाप दे दिया, जाओ गरुड़ भी अब तुमसे मित्रता करेगा, तो वो रमण की थी। इसलिए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, वैष्णव के साथ में कभी द्रोह न हो। जो भगवान का नामाश्रित किए हैं, शुद्ध गुरु का पदाश्रय किए हुए हैं, शुद्ध गुरु से हरिनाम दीक्षा लिए हैं और शुद्ध गुरु में उसको पालन कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उनके साथ में बैर विरोध मत करो, अपराध मत करो। नहीं तो हरिनाम करने से भगवान की कथा, भागवत की कथा सुनने पर भी या भागवत की कथा सुनने पर भी भक्ति नहीं होगी। इसलिए बलदेव प्रभु जी ने शुद्ध गोस्वामी का गला ही काट दिया, वो तो भागवत की कथा कर रहे थे, क्यों? वैष्णव को आदर नहीं दे सके, बलदेव जी को आदर नहीं दिया, उस सभा में सौनक इत्यादि ऋषि से आदर नहीं दिया, इसलिए उनको कहा। इसलिए हाँ, भागवत की कथा सुनने से ही यदि सांसारिक चीजों की लालसा है, भागवत की कथा सुना करके हम अपना संसार का पालन पोषण करेंगे, ये भक्ति का विकास है। इसी तरह से धीरे 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 दे आए, जब चित्त शुद्ध हो गया, सदगुरु से दीक्षा हुई, बलदेव प्रभु जी गुरु तत्व हैं, इसलिए धर्म का चुकावत किया। इसके बाद में काली का ये प्रसंग आया, काली के प्रसंग में होने के बाद में धीरे 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 इन्होंने सुनाया होगा वो कुमारियों की पूर्वराग में, उन्होंने कात्यायनी व्रत किया, सब कुछ छोड़ करके यमुना की शरणागत हुई। यह यमुना जी कौन है? कृष्ण की प्रिया है। यमुना में रोज स्नान करके उनके अनुगत्य में कात्यायनी माने जोग माया की आराधना की, इसलिए कृष्ण ही हमारे नंद सुत पतिम देही, कृष्ण को ही हमको पति बनाए, कृष्ण का अतिरिक्त हमारा और कोई पति नहीं है, ये पति हैं 2 दिन के लिए, 100 वर्ष के लिए, ये हमारे पति नहीं है बल्कि हमारे पतियों के भी पति वो कृष्ण हैं। इस चीज़ को समझा जाए, ये जगत में विवाह शादी करके उसमें रमणी के लिए हम नहीं आए हैं, हम किस लिए आए हैं? कृष्ण को पति करने के लिए आए। जैसे कृष्ण को पति बना लिया उसका जीवन था, और जो कृष्ण को पति नहीं बना करके संसार को ही अपना पति बनाया उसका जन्म सफल नहीं। इस चीज़ को समझना चाहिए, नहीं तो मीराबाई अपने पति को छोड़ करके चली जाती, गोपियां अपने पतियों को छोड़ करके कृष्ण के पास में क्यों जाती? इसके बाद में गोपियों को, उन गोपियों को कृष्ण ने चीरहरण माने क्या, लज्जा तक भी कृष्ण के लिए उन्होंने प्रत्याग कर दिया, तो और क्या बात। स्त्रियां सब कुछ छोड़ सकती हैं, एक चीज नहीं छोड़ती, लज्जा नहीं छोड़ती। विशेष करके राजपुताने में देखिए, वहां की विख्यात प्राणियों ने अपने पतियों के मर जाने पर जौहर प्रत, जौहर प्रत माने क्या, जब उनके पति चले गए युद्ध में जा रहे हैं, देखा कि पतियों की लालसा कुछ स्त्रियों पर है, हमारे जाने के बाद में क्या होगा, यदि नहीं युद्ध में हम लोग मारे गए तो हमारी स्त्रियों को पकड़ ले जाएंगे। स्त्रियां इस भाव को समझ गई, कहा जब ठहर जा, ठहर दो मिनट ठहर करके तब जाना युद्ध में। बस चिता लगाई विराट, जब वो थक थक करके जलने लगी चिता, उनके सामने देखते ही स्त्रियां वो जितनी थी परम सुंदरियां, बस उसी में जल करके खा, पतियों को बड़ा जोश और उत्साह हुआ, ठीक है अब हम लोग प्राण जाने तक भी अपने प्राणों को उत्साह कर देंगे, और युद्ध में गए। एक एक ने दस दस बीस बीस मुसलमानों को मारा, बड़ा भारी युद्ध हुआ, जीत तो हुई ऊपर से मुसलमानों की, किंतु जीत किसकी हुई, हिंदू संस्कृति की जीत हुई। इस चीज को समझना चाहिए अच्छी तरह, तो इसलिए जिनके प्रिय न राम बैरी सजिए को भी बैरी समझ, जब तक परमर्श नहीं अतंत स्नेह का पात्र भी उसको छोड़ जाना चाहिए, ये भागवत सुनने का ये फल है। तत्पश्चात हुआ कृष्ण ने वेणु बजाई, वेणु भी फिर चल को मुग्ध कर दिया। गोपियां घरों में बैठ करके दलों दलों में बातचीत कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, अशुक्त वेणु जी तक स्मरोदयम, स्मर का प्रेम का उनके हृदय में बाढ़ आ गई, सब कुछ भूल गई, तन मन सब भूल गई। और कृष्ण चिंता में आए, कैसे चिंता में आए, बरहा पीड़म नट बर बहु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपितम।